गुरुवार 27 अगस्त की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से क्वांटस की सालाना कमाई में 420 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की कमी आई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और फ्लाइट्स में रुकावटों का असर एयरलाइन की कमाई पर पड़ा है। क्वांटस ने वित्त वर्ष में 1.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% कम है। हालांकि एयरलाइन का रेवेन्यू बढ़कर 25.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह से जेट फ्यूल प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी हुई और क्वांटस को अपने एयरक्राफ्ट का रूट बदलकर एशियन हब्स के जरिए उड़ानें संचालित करनी पड़ी। इसके जवाब में एयरलाइन ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी कम कर दी और 150 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के प्लान्ड शेयर बायबैक को टाल दिया। सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस में 16 साल की एक लड़की की मौत के बाद रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स की बेहतर एजुकेशन की मांग उठी है। वो रविवार को एलेनोरा हाइट्स के एक घर में बेहोश मिली थी और मंगलवार यानी 25 अगस्त को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उन रिपोर्ट्स की पुष्टि करने से इनकार किया है जिनमें कहा गया है कि सेक्सुअल चोकिंग को उसकी मौत के संभावित कारण के तौर पर जांचा जा रहा है। इस मामले में अभी तक कोई चार्जेस नहीं लगाए गए हैं और पुलिस की जाँच जारी है। स्वतंत्र सांसद जैली स्टेगल ने कहा कि ये मामला रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स को लेकर नेशनल एजुकेशन कैंपेन की जरूरत को दिखाता है। उनकी ये मांग जेंडर बेस्ड वायलेंस पर इस हफ्ते हुई नेशनल कैबिनेट मीटिंग के बाद आई है। विक्टोरिया के प्रीमियर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेस पर लगाए गए एक ऐसे लेवी के लिए माफी मांगी है जिसके बारे में पहले सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने इसे हटाने का भी वादा किया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये चार्ज 2025 में शुरू किया गया था। इसके तहत इन्फ्लेशन के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेस में हर साल 1% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई, लेकिन इसे अलग से सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार इस लेवी से मिलने वाली रकम का 60% मेलबर्न के सबर्बन रेल रूप को फंड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। प्रीमियर बेन कैरल, जो 2021 में लेवी को मंजूरी दिए जाने के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ने कहा कि इसे बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और विक्टोरियंस को इस बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए थी। इस चार्ज से फेयर्स में इस साल कटौती किए जाने से पहले 6.2 मिलियन डॉलर्स की रकम जुटाई गई। बेन मार्नीस की टीम ने गोल्ड कोस्ट पर कल रात निकिता ज़ू के खिलाफ हुए आईबीएफ सुपर वाटरवेट वर्ल्ड टाइटल फाइट की जजिंग की समीक्षा की मांग की है। 12 राउंड्स के बाद दोनों अनबीटन ऑस्ट्रेलियंस के बीच स्प्लिट ड्रॉ रहा। एक जज ने ज़ू को 9 राउंड्स दिए, दूसरे ने मार्नी को विजेता माना, जबकि तीसरे जज ने फाइट को बराबरी का स्कोर दिया। मार्नी का कहना है कि उन्होंने फाइट जीतने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया था। ऑन्टोरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही तीखी बयानबाजी को कम करने और टैरिफ्स को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने का समय है। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड टॉक्स पिछले हफ्ते टूट गई थीं। दोनों पक्षों ने बातचीत रुकने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। और अब खबर भारत से। भारत और चाइना के बीच 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत के बाद दोनों देशों ने सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर 8 पॉइंट्स पर सहमति बनाई है। बीजिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और बाउंड्री नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और चाइना के बीच ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर्स में 2 नए मिलिट्री मीटिंग पॉइंट्स और 2 नए बॉर्डर मिलिट्री हॉटलाइन चैनल शुरू करने पर भी सहमति बनी है। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ज्यादा बैचेस और 3 बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स दोबारा खोलने का भी स्वागत किया है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें। SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।